आजकल टेक्नोलॉजी मतलब खासकर ये मेटावर्स, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब की बातें बहुत हो रही हैं।
हाँ बिल्कुल, ये भविष्य की तकनीकें लगती तो हैं।
पर इनसे जुड़े साइबर खतरे तो आज भी हैं और शायद कल और बढ़ेंगे।
सही कहा।
हमारे पास ना एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ से हुई बातचीत के कुछ अंश हैं, तो सोचा आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करें।
जरूर जरूर, ये बहुत जरूरी विषय है।
तो शुरुआत मेटावर्स से करते हैं, ये जो एक पैरेलल वर्चुअल दुनिया बनाने का कॉन्सेप्ट है।
हाँ, मेटावर्स कोशिश ये है कि एक ऐसी डिजिटल दुनिया बने जो बिल्कुल असली लगे,
इतनी असली कि शायद हम फर्क ही ना कर पाए। मार्क ज़करबर्ग का तो यही आइडिया लगता है।
हाँ, उनका लक्ष्य तो यही है कि हम अपने बहुत सारे काम मतलब कुछ बेसिक चीजों को छोड़ दें तो बाकी सब वर्चुअल दुनिया में ही करें। और देखिए, जैसे जैसे हम इन वर्चुअल दुनियाओं में ज्यादा वक्त बिताएंगे, एक तरह से अपराध का एक नया फेज शुरू हो सकता है।
मतलब जो असल दुनिया में होता है वो वहां भी होगा।
बिल्कुल, असल दुनिया के अपराध वहां शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे शोषण या हमले। ऐसी घटनाएं तो वर्चुअल वर्ल्ड में रिपोर्ट भी हुई हैं।
अच्छा।
हाँ, वो रेडी प्लेयर वन जैसी फिल्में हैं ना, वो अब सिर्फ कल्पना नहीं रही, वो दिखाती हैं कि ये भविष्य कितना अजीब और शायद डरावना भी हो सकता है।
सही बात है। अच्छा, मेटावर्स के अलावा एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग, ये भी तो बड़े बदलाव ला रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, और यही पर वो सिंगुलैरिटी का आइडिया आता है।
सिंगुलैरिटी, ये क्या चीज है? सुनने में काफी भारी लगता है।
भारी है भी। सिंगुलैरिटी मतलब वो समय, वो पॉइंट जब किसी एक अकेले कंप्यूटर की इंटेलिजेंस, उसकी सोचने समझने की शक्ति,
हाँ,
वो पृथ्वी के सारे इंसानों की कुल मिलाकर जो इंटेलिजेंस है उससे ज्यादा हो जाएगी।
अरे बाप रे, सबसे ज्यादा?
हाँ, पहले अंदाजा था कि ये शायद 2045 तक होगा, पर अब जिस तेजी से ये जेनरेटिव एआई आया है।
हाँ, वो तो बहुत तेज है।
तो कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद 2030 तक ही हम सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाएं, या क्या पता उससे भी पहले।
इसीलिए एलन मस्क जैसे लोग चिंता जता रहे थे, वो एआई रिसर्च रोकने की बात कर रहे थे।
बिल्कुल, इसी चिंता के कारण, क्योंकि इसके परिणाम क्या होंगे कोई ठीक से नहीं जानता।
और अगर इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग जुड़ जाए, मतलब क्वांटम एआई, तब तो
बात और भी आगे निकल जाती है। क्वांटम एआई शायद ऐसी चीजों को समझने में मदद कर सकता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं, वो जिन्हें कहते हैं अननोन अननोन, अज्ञात अज्ञात,
अज्ञात अज्ञात।
हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग की जो पावर है वो आज के सबसे मजबूत इंक्रिप्शन को भी शायद तोड़ सके। और यहीं से खतरा है, इसका सीधा असर अपराध की दुनिया पर पड़ेगा। ये ताकतें सिर्फ अच्छे कामों के लिए नहीं, गलत हाथों में भी जा सकती हैं।
तो क्या इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में, मतलब अगले कुछ सालों में, ज्यादातर अपराध साइबर वाले होंगे?
हाँ, एक अनुमान तो यही कहता है शायद अगले 3 साल में ही दुनिया के 70-80% अपराध वो साइबर क्राइम होंगे।
70-80%, इतना ज्यादा?
हाँ, वजह साफ है, साइबर स्पेस में अपराधी के लिए जोखिम कम है, पहचान छुपाना आसान है, दुनिया के किसी भी कोने से ऑपरेट कर सकते हैं।
बात तो सही है।
तो जो पारंपरिक अपराध हैं वो शायद कम होंगे और साइबर अपराध बढ़ेंगे।
ये भविष्य की बातें तो थोड़ी चिंता तो करती हैं, पर आजकल भी तो अजीब अजीब फ्रॉड हो रहे हैं। वो आपके बातचीत में एक ड्राई फ्रॉड का जिक्र था, वो क्या है?
हाँ, ड्राई फ्रूट फ्रॉड, ये एक बड़ा क्लासिक उदाहरण है कि अपराधी कैसे पहले भरोसा जीतते हैं।
अच्छा, कैसे?
वो क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे ऑर्डर देते हैं या लेते हैं। मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है, तो पहले आपसे कम माल खरीदेंगे, टाइम पर पेमेंट करेंगे, अच्छी क्वालिटी मांगेंगे, या अगर वो सप्लायर हैं तो आपको अच्छा माल टाइम पर भेजेंगे।
हाँ, ताकि भरोसा बन जाए।
बिल्कुल, और जब आपको या सामने वाले को पूरा भरोसा हो जाता है, तब वो एक बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं या लेते हैं, बड़ा एडवांस देते हैं या लेते हैं, और फिर गायब।
मतलब पहले विश्वास जीतो, फिर बड़ी ठगी करो।
एग्जैक्टली, इसी तरह वो ओवर पेमेंट स्कैम भी चल रहा है।
ओवर पेमेंट, वो कैसे होता है?
उसमें अपराधी खरीदार बनता है, आपसे कोई चीज खरीदेगा और फिर कहेगा मैंने आपको ज्यादा पैसे भेज दिए हैं गलती से, एक नकली एसएमएस या स्क्रीनशॉट दिखाएगा।
अच्छा।
और फिर कहेगा कि जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो मुझे वापस कर दो, जबकि असल में उसने कोई एक्स्ट्रा पैसा भेजा ही नहीं होता, बस वो नकली प्रूफ दिखाता है।
कमाल है, मतलब हर रोज नए तरीके निकाल रहे हैं लोग।
बिल्कुल।
ऐसे में अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाए तो क्या बैंक कुछ करते हैं? अक्सर सुनने में आता है कि बैंक हाथ खड़े कर देते हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती?
बनती है, बिल्कुल बनती है। आरबीआई की साफ गाइडलाइंस है इस पर।
है, क्या है वो
गाइडलाइन? ये कहती है कि अगर आपके साथ कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होता है, मतलब धोखाधड़ी होती है, और आप फॉरेन बैंक को बताते हैं, खासकर 3 वर्किंग डेज के अंदर, तो आपकी लायबिलिटी यानी आपकी देनदारी या तो बहुत कम हो जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है। बैंक को वो पैसा लौटाना पड़ सकता है।
अच्छा, ये तो जानना बहुत जरूरी है।
हाँ, और अगर बैंक ना सुने तो आप RBI ओम्बुड्समैन के पास भी जा सकते हैं।
हाँ, वो बैंकिंग शिकायतों के लिए ही है।
हाँ, ये अच्छी बात है। मैंने सुना ब्रिटेन में भी ऐसा कोई कड़ा कानून है।
हाँ, ब्रिटेन में तो अभी हाल में एक नियम आया है कि अगर आप टाइम पर फ्रॉड रिपोर्ट करते हैं तो बैंक को 5 बिजनेस डेज के अंदर 100% पैसा वापस करना होगा।
100%?
हाँ,
चाहे गलती ग्राहक की हो।
हाँ, चाहे गलती ग्राहक की ही क्यों ना हो। इससे बैंकों पर प्रेशर रहता है कि वो अपने सिस्टम मजबूत रखें।
वाह, ऐसा कानून तो यहाँ भारत में भी आना चाहिए।
जरूरत तो है, इससे पीड़ितों को बहुत राहत मिलेगी और बैंकों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। और आपको सबको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
बिल्कुल, बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। और इसमें एक और बात है जो मुझे कभी कभी डराती है।
क्या?
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी और डेटा के गुलाम बनते जा रहे हैं?
गुलाम? किस तरह से?
देखिए ना, आज हमारी पसंद नापसंद, हमारे डर, हमारी इच्छाएं, सब कुछ कहीं ना कहीं डेटा से कंट्रोल हो रहा है। उसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, विज्ञापन से लेकर ओपिनियन तक।
ये बात तो है।
शायद असली आजादी या असली ताकत डर और मोह से ऊपर उठने में है। जैसे इलॉन मस्क जैसे लोग लगते हैं, वो बिना डरे बड़े अजीब फैसले ले पाते हैं। शायद वो डर और अटैचमेंट से उतने बंधे हुए नहीं है।
ये काफी गहरी बात है, सोचने वाली बात है। और एक सवाल जो मेरे मन में आता है, क्या AI कभी इंसानों की तरह कॉन्शियस हो पाएगा, सचेत?
हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या AI में भावनाएं आएंगी, सेल्फ अवेयरनेस?
या फिर इंटेलिजेंस एक चीज है और चेतना बिल्कुल दूसरी, जिसे हम टेक्नोलॉजी से बना ही नहीं सकते?
ये फिलोसॉफिकल सवाल है, लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है, ये प्रैक्टिकल भी बनता जा रहा है।
और ये भी सोचना अजीब है कि क्या इतिहास दोहरा रहा है खुद को, वो पुरानी साइंस फिक्शन फिल्में Ready Player 1 या मैट्रिक्स?
हाँ,
वो आज की टेक्नोलॉजी को देखकर सच होती सी लग रही है। ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है, सोचने पर मजबूर करता है।
बिल्कुल, भविष्य अनिश्चित है, पर तैयारी और जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है।